पाठ 22 अध्याय 14 और 15। हम तजारात के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तजारात के पीछे का सिद्धांत यह है कि यह ईश्वर के कार्य के कारण होता है, जिसके द्वारा प्रभु यह निर्धारित करता है कि वह किसी व्यक्ति की बुरी या अशुद्ध आध्यात्मिक स्थिति को दृश्यमान बनाना चाहता है। हमने इसे कपड़े और चमड़े पर भी लागू होते देखा है। तजारात स्पष्ट रूप से एक आध्यात्मिक बीमारी है। आयत 33 से शुरू करते हुए लय व्यवस्था एक घर पर तजारात से निपटती है। आइए इस पवित्र शास्त्र भाग से फिर से परिचित होने के लिए लय व्यवस्था 14 के एक छोटे से हिस्से को फिर से पढ़ें। लय व्यवस्था 14 का 33 को पुनः अंत तक पढ़ें। जैसा कि आयत 34 में स्पष्ट किया गया है, यह यहोवा ही है जो किसी के घर पर यह विपत्ति डालता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, जब मैं देश में तुम्हारे घर पर विपत्ति डालता हूं, यह परमेश्वर के विरुद्ध किसी प्रकार के अपराध के लिए एक साजा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी मनुष्य पर थे, एक ईश्वरीय न्याय है। और स्वाभाविक रूप से घर पर इस बीमारी से निपटना किसी व्यक्ति पर त्वचा रोग से निपटने के समान ही था। सबसे पहले अगर दीवार पर हरा या लाल रंग का दाग दिखाई दे तो इसकी सूचना पुजारी को देनी चाहिए। पुजारी ही यह तय करेगा कि यह तजारात है या नहीं। अगर पुजारी को घर में तजारात का संदेह होता है तो उसे 7 दिनों के लिए अलग रखा जाता है। 7 दिनों के बाद पुजारी घर वापस आता है और घर का निरीक्षण करता है। अगर रंग में बदलाव फैल गया है तो इसे तेजारात माना जाता है। बीमारी को खत्म करने के लिए संक्रमित पत्थरों को हटाकर कैंप के बाहर एक खास जगह पर रखना होता है। उन्हें किसी गंदी जगह पर रखा जाता है। इसके अलावा, चूंकि ज्यादातर घर पत्थरों या मिट्टी की ईंटों से बने होते हैं और फिर पत्थरों या ईंटों पर मिट्टी की एक परत प्लास्टर की तरह इस्तेमाल की जाती है, लगाई जाती है ताकि इसे जलरोधी बनाया जा सके, इसलिए रंगहीन जगह के आसपास मिट्टी के प्लास्टर को खुरच कर हटा देना चाहिए और इसे भी कैंप के बाहर किसी गंदी जगह पर रखना चाहिए। रोगग्रस्त पत्थरों को नए पत्थरों से बदला जाना चाहिए और फिर से प्लास्टर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कुछ समय बीतने के बाद घर में बीमारी फिर से लौट आए, घर के किसी भी हिस्से में इसे तजारात का गंभीर मामला माना जाता है और घर को गिरा दिया जाना चाहिए। फिर घर के अवशेषों को शिविर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर ले जाया जाना चाहिए और वहां जमा किया जाना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो वह व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, लेकिन यह गंभीर प्रकृति का नहीं है। वह तजारात से पीड़ित नहीं होता, वह केवल सूर्यास्त तक यानी वर्तमान दिन के अंत तक अशुद्ध रहता है। अगर कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करता है और घर में लेट जाता है या संक्रमित घर के अंदर खाना खाता है तो उसे सूर्यास्त तक साफ होने के लिए इंतजार करने के अलावा उसके कपड़ों को भी धोना चाहिए ताकि यह संकेत मिले कि वह थोड़ा सा संक्रमित है। अशुद्धता का उच्च स्तर अनुबंधित किया गया था। अब सदियों के दौरान तजारात के निर्धारण के विवरण के बारे में कई सवाल सामने आए। उदाहरण के लिए रंगहीन क्षेत्र, जिसे इब्रानी में नेगा कहा जाता है, कितना बड़ा होना चाहिए ताकि इसे समस्या माना जा सके। यह निर्धारित किया गया था कि दीवार पर रंगहीन स्थान किसी व्यक्ति की त्वचा या किसी व्यक्ति के परिधान पर योग्य नेगा के आकार का कम से कम 2 गुना होना चाहिए ताकि उसे तजारात माना जा सके। मिशना में कहा गया है कि त्वचा पर तजारात के रूप में योग्य होने के लिए नेगा का आकार 2 ग्रिसिन के बराबर होना चाहिए या आधुनिक माप के अनुसार 1 पैसे के बराबर होना चाहिए, इसलिए दीवार के लिए 2 गुना। इसके अलावा रंगहीनता नेगा इमारत के 2 पत्थरों पर दिखाई देना चाहिए। एक और विचार, रंग था क्या इसे पूरी तरह से लाल या पूरी तरह से हरा होना चाहिए? जवाब था कि यह रंगों का संयोजन हो सकता है।
घर और व्यक्ति पर तजारात के उपचार के बीच कुछ समानताओं पर ध्यान दें। यदि विस्फोट होता है तो पुजारी को निर्णय लेने के लिए बुलाया जाना चाहिए। यदि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं है कि यह तजारात है तो 7 दिनों की अवधि के लिए संगरोध की आवश्यकता होती है। यदि यह तजारात है तो प्रभावित वस्तु, चाहे वह इमारत का पत्थर हो या कोई व्यक्ति, अशुद्ध घोषित किया जाता है और उसे शिविर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर रखा जाना चाहिए। तजारात के उपचार का एक हिस्सा यह है
कि वस्तु की सतह को खुरचकर हटा दिया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति के बाल को खुरचकर हटा दिया जाना चाहिए, इसी तरह इमारत के मिट्टी के प्लास्टर को भी खुरचकर हटा दिया जाना चाहिए। मुद्दा यह है कि किसी व्यक्ति, घर, कपड़े या चमड़े की वस्तु पर तजारात से निपटने का पैटर्न एक जैसा ही रहता है। अब तक ये शायद ही आश्चर्यजनक हो, इसलिए जैसा कि हम पद 49 में देखते हैं कि घर को दूषित करने के लिए अर्थात पत्थर और मिट्टी का प्लास्टर हटा दिया गया था, लेकिन घर को नष्ट या ध्वस्त नहीं किया गया था। हम फिर से उसी सूत्र को देखते हैं जो किसी व्यक्ति के शुद्धकरण के लिए है, और इसमें स्वच्छ पक्षियों की एक जोड़ी, हिस्सोप, लाल रंग और देवदार की लकड़ी का उपयोग करके एक अनुष्ठान शामिल है। पक्षियों में से एक का खून एक कटोरे में रखा जाता है जिसमें मायम चयम जीवित जल होता है, और मिश्रण को घर पर 7 बार छिड़का जाता है। इसके बाद जीवित पक्षी को मुक्त कर दिया जाता है और घर साफ हो जाता है। अध्याय बिना किसी बलिदान के समाप्त होता है। याद रखें कि पक्षी की हत्या को बलिदान नहीं माना जाता है, यह अनुष्ठान हत्या का एक अलग वर्गीकरण है। तो घर के लिए कोई बलिदान क्यों नहीं चढ़ाया जाता? जैसा कि मैंने आपको पिछले कई हफ्तों में दिखाया है कि अशुद्ध अवस्था से शुद्ध होने के लिए एक प्रक्रिया है, अशुद्ध अवस्था से स्वच्छता की स्थिति में, और फिर शुद्धता से एक व्यक्ति को रक्त बलिदान के माध्यम से पवित्र बनाया जा सकता है। चूंकि घर को पवित्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल साफ होना है, इसलिए घर के लिए किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। पवित्रता एक घर के लिए एक आवश्यक स्थिति नहीं है, क्योंकि यह कभी भी परमेश्वर के साथ संवाद में नहीं होने वाला है। पक्षी, जीवित जल, हिस्सोप, लाल रंग, देवदार की लकड़ी की प्रक्रिया ही वह सब है जिसकी आवश्यकता है। इस बिंदु पर पूछने के लिए एक बहुत ही उचित प्रश्न है, क्या तजारात अभी भी होता है? वास्तव में यह आम तौर पर रब्बियों द्वारा सहमत है कि यह नहीं होता है, कम से कम बाहरी तौर पर तो नहीं। वे अवलोकन के अनुसार ऐसा मानते हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने देखा है कि सदियों से तजारात के कोई झात मामले नहीं है। स्वाभाविक रूप से वे भी इससे हैरान है। यहूदी संतों द्वारा इसके संभावित कारणों के बारे में कई तरह के तर्क दिए गए हैं, और सबसे स्वीकार्य कारण यह है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई मंदिर नहीं है। चूंकि कोई मंदिर नहीं है, इसलिए कोई पुजारी नहीं है। पुजारी के बिना तजारात को पहचानने या शुद्धिकरण और प्रायश्चित करने का कोई अधिकार नहीं है। अनुष्ठान और मंदिर के बिना वैसे भी उन अनुष्ठानों को करने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जब प्रभु अब लोगों की त्वचा को तजारात से पीड़ित नहीं करते हैं, तो वे उनकी आत्मा को पीड़ित करते हैं। इसलिए जब वे दिखाई नहीं देते हैं, तो व्यक्ति की आत्मा को अशुद्ध किया जा सकता है, और मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा का तजारात न केवल उनके बाद के जीवन में उनका पीछा करता है, बल्कि यह निर्धारित करता है कि वे धर्मी मृतकों के समुदाय के साथ नहीं रह सकते हैं, और इसलिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है।
मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है कि यह विचारधारा ईसाई मान्यताओं के साथ कितनी अच्छी तरह से जुड़ती है। वास्तव में हमारी अशुद्धता केवल ईश्वर को ही दिखाई देती है, और इसे मसीहा यीशुआ द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए, अन्यथा हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, और इसीलिए वह ईश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकती। इसका परिणाम नरक में जीवन के बाद होता है, जो मसीह में धर्मी मृतकों के समुदाय से हमेशा के लिए दूर होता है। आइए हम तजारात के विषय को छोड़कर लैव्य व्यवस्था 15 पर आते हैं। लैव्य व्यवस्था अध्याय 15।
मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं कि अध्याय 15 बहुत ही स्पष्ट और स्पष्ट है। यह मानव श्राव के विषय को संबोधित करता है, पुरुषों और महिलाओं के यौन अंगों से सामान्य और असामान्य दोनों, और यह बहुत ही तथ्यात्मक रूप से करता है। कुछ लोगों के लिए असुविधा के कारण इस अध्याय को छोड़ना काफी आसान होगा, फिर भी यह ईश्वर का वचन है, पवित्र शास्त्र यह तोरा है। यह हमें दिया गया था कि हम इसका अध्ययन करें और इसे पढ़ें और इसे जानें। तोरा की पहली पुस्तक जिसे आमतौर पर धार्मिक यहूदियों को पढ़ाया जाता है वह है लय व्यवस्था और अध्याय 15 को छोड़ा नहीं जाता है। इसलिए अगर 6 साल के बच्चे इसे संभाल सकते हैं तो हमें भी संभालना चाहिए। लय व्यवस्था 15 पूरा पढ़ें। अध्याय 15 स्वच्छ और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने वाले अध्यायों की श्रृंखला में अंतिम है। अगला अध्याय जिस पर हम चर्चा करेंगे जब हम इसे पूरा कर लेंगे, अध्याय 16, वह सभी महत्वपूर्ण योम किप्पुर अनुष्ठान पर चर्चा करता है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अशुद्धता पर ये 5 पूर्ववर्ती अध्याय योम किप्पुर अनुष्ठान की आवश्यकता को स्थापित करते हैं।
योम किप्पुर अनुष्ठान, प्रायश्चित का वार्षिक दिन, मुख्य रूप से तंबू स्वयं अभयारण्य को अशुद्धता से शुद्ध करने के बारे में है, जो तंबू और बाद में मंदिर के मनुष्यों के साथ लगातार दैनिक संपर्क के कारण आई थी, जिनमें से कई अशुद्ध स्थिति में थे और उन्हें इसका पता नहीं था, या उन्होंने अशुद्ध अवस्था में तंबू में प्रवेश करके या अनजाने में परमेश्वर के शुद्धता के नियमों का उल्लंघन किया था, जैसे कि महिला का प्रवेश और बिना किसी चेतावनी के उसका मासिक धर्म शुरू हो जाना।
अब मुझे लगता है कि मैं अध्याय 15 के बारे में जो बात स्थापित करने और समझाने की पूरी कोशिश करना चाहता हूं और जो पिछले 4 अध्यायों और हमारे वर्तमान अध्याय की समग्रता से प्रदर्शित होती है, वह यह है कि अशुद्धता की स्थिति में प्रवेश करना अनिवार्य रूप से पाप करने के बराबर नहीं है। मैं इसे दोहराता हूं, हम अशुद्ध और पापी को समानार्थी नहीं बना सकते और न ही बनाना चाहिए। अशुद्ध होना अनिवार्य रूप से किसी व्यक्ति को पापी नहीं बनाता और न ही यह दर्शाता है कि उसने पाप किया है। यह समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बाइबल मूल सिद्धांत है।
मैं आपको उन स्थितियों का उपयोग करके इसे प्रदर्शित करता हूं जिन पर हमने पहले चर्चा की है। तोरा में यहोवा हमें बताता है कि वह दुनिया को लोगों और चीजों के 2 बुनियादी समूहों में विभाजित देखता है, स्वच्छ लोग और चीजें और अशुद्ध लोग और चीजें। स्वच्छ लोग वे लोग हैं जो इसराइल के शिविर का हिस्सा हैं, अशुद्ध लोग वे हैं जो इसराइल के शिविर से बाहर हैं। सामान्य शब्दों में इसराइली स्वच्छ लोग हैं, गैर यहूदी अशुद्ध लोग हैं। जिन सभी पर हमने चर्चा की है उनमें कई चेतावनियां हैं।
तो फिर ऐसा क्या है जो गैर यहूदियों को अशुद्ध और इसराइलियों को शुद्ध बनाता है? क्या यह पाप है? क्या गैर यहूदी स्वाभाविक रूप से पापी हैं और इसराइली नहीं? क्या गैर यहूदी यहोवा की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं लेकिन इसराइली नहीं करते? क्या गैर यहूदियों में पाप की प्रकृति होती है जो आदम से विरासत में मिली है लेकिन इसराइलियों ने किसी न किसी तरह से इससे परहेज किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाप करना, जैसा कि हमारा पापी स्वभाव है, अशुद्धता की ओर ले जाता है। जो इब्रानी लोग तोरह का पालन करते थे उनके पास अपनी अशुद्धता के लिए उपाय था, अन्य सभी के पास नहीं था। अन्य जाति लोग स्वच्छ अवस्था में जन्म लेते हैं परंतु शीघ्र ही हमारी पापमय प्रकृति हमें पाप करने के लिए प्रेरित करेगी।
पाप अशुद्धता लाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी अन्य जाति अशुद्ध हैं क्योंकि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए जब तक हम इसराइल में शामिल नहीं हो जाते, हमारे पास अपने पाप के कारण हुई अशुद्धता से शुद्धता प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है।
अपने उद्धारकर्ता के कार्य को स्वीकार करके हम परमेश्वर द्वारा इसराइल के साथ की गई वाचा के प्रावधानों को स्वीकार कर रहे हैं। यीशु पर भरोसा करके हम इसराइली बन जाते हैं, शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और इसीलिए हमारे पाप और उससे उत्पन्न अशुद्धता दोनों के लिए एक उपाय है।
अब जबकि यह पैटर्न स्थापित हो गया है, यानी यह परमेश्वर का चुनाव है कि क्या शुद्ध और अशुद्ध को परिभाषित करता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है या नहीं, हम इसे इन महत्वपूर्ण 5 अध्यायों में भी पाते हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हम कई स्थितियों को पाते हैं, जैसे कि एक माँ का बच्चे को जन्म देना या उसका मासिक धर्म शुरू होना या किसी मृत शरीर को छूना जिसे किसी भी तरह से हम समझ नहीं सकते, सीधे पाप करने से नहीं जोड़ा जा सकता। हम पाते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ स्वीकार्य हैं, स्वच्छ हैं, जबकि अन्य निषिद्ध हैं, अशुद्ध हैं। क्या इनमें से कुछ खाद्य पदार्थ अच्छे हैं और अन्य बुरे? नहीं।
हम पाते हैं कि कुछ जानवरों को बलि के प्रयोजनों के लिए शुद्ध माना जाता है और अन्य को अशुद्ध। क्या कुछ जानवर अच्छे हैं और अन्य बुरे? नहीं। पैटर्न यह है कि परमेश्वर ने कुछ विकल्प बनाए हैं बस, और विश्वास के साथ हमें उन विकल्पों को बिना किसी स्पष्टीकरण के स्वीकार करना होगा। इन शुद्ध और अशुद्ध सिद्धांतों को आधुनिक ईसाई शब्दावली में ले जाना, क्या आप परमेश्वर द्वारा राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए चुने गए थे? इससे मेरा मतलब है बचाए गए, क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों से बेहतर थे, या यहोवा ने आपको इसलिए स्वीकार किया क्योंकि आपने दूसरों की तुलना में बेहतर व्यवहार प्रदर्शित किया? परमेश्वर के राज्य के लिए चुनाव का सिद्धांत वह रहस्यमय चुनाव जो परमेश्वर मनुष्यों के बीच करता है, जिसे धर्मशास्त्रियों ने सदियों से समझने और समझाने की कोशिश की है, यह बस शुद्ध और अशुद्ध का विस्तार और प्रतिरूप है। आप आकर्षित होते हैं और शुद्ध घोषित किए जाते हैं क्योंकि यहोवा ने अपनी संप्रभुता में आपको चुना है। अन्य लोग आकर्षित नहीं होते हैं और वे अशुद्ध रहते हैं क्योंकि यहोवा ने अपनी संप्रभुता में उन्हें नहीं चुना है। इसके विपरीत, यदि आपको राज्य में प्रवेश मिल गया है, तो एक विश्वासी के रूप में यदि आप फिर से पाप करते हैं तो क्या आप फिर से अशुद्ध हो जाते हैं? हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा संभव है तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा को हमें अवश्य छोड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे जो भी कारण हो, अनुबंध के कारण अशुद्धता और अपवित्रता का प्राथमिक प्रभाव यह है कि अशुद्ध व्यक्ति और ईश्वर के बीच एक अवरोध खड़ा हो जाता है। किसी भी अशुद्ध चीज को पवित्र व्यक्ति के संपर्क में आने की अनुमति नहीं है। इसीलिए यह कहना कि एक आस्तिक अशुद्ध अवस्था में है एक विरोधाभास है। मैं नहीं देखता कि आप एक ही समय में दोनों कैसे हो सकते हैं। तो यह सब प्रदर्शित करते हुए प्रभु ने हमें यह भी दिखाया है कि पवित्रता क्या है। परमेश्वर पवित्र होने के नाते अशुद्ध लोगों के साथ सभी संपर्क से बचता है। हमें पवित्र होने के नाते केवल यीशु में हमारे भरोसे के कारण यहोवा के उदाहरण और आदेशों का पालन करना चाहिए और अशुद्ध चीजों के संपर्क से भी बचना चाहिए। एक पवित्र लोगों, वास्तव में एक पुजारी के रूप में, हमारे लिए अशुद्ध चीजों के संपर्क में आना असंगत है। इस अध्याय में हम ऐसे कई कारण पाएंगे कि एक पुरुष या महिला को अशुद्ध घोषित किया जा सकता है जबकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके अलावा हम दूसरा महान सिद्धांत पाएंगे जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, कि सभी अशुद्धताएं एक जैसी नहीं होती हैं। अशुद्धता की कई डिग्री होती है। कुछ अशुद्धताएं स्थायी होती हैं, कुछ अशुद्धताएं अस्थायी होती हैं, कुछ परमेश्वर की सीधी सजा होती है, कुछ सामान्य और अपरिहार्य शारीरिक कार्यों से आती है, और अशुद्धता की प्रकृति के आधार पर हम पाएंगे कि नदी में एक त्वरित डुबकी व्यक्ति को पवित्रता में वापस ला सकती है। अन्य समय में बस सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करना, जो एक दिन समाप्त होता है और अगले दिन शुरू होता है, शुद्ध करता है। अन्य अवसरों पर अनुष्ठानों की एक विस्तृत और महंगी श्रृंखला करनी पड़ती है जिसमें पुजारी शामिल होते हैं। कुछ मामलों में अशुद्धता इतनी गंभीर होती है कि व्यक्ति को उसके समाज से और परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अन्य समय में यह बहुत ही छोटा और सीमित अलगाव होता है। अध्याय 15 की पहली 18 आयतें केवल पुरुषों से संबंधित हैं और आयत 1 यह कहकर शुरू होती है, यदि किसी पुरुष के शरीर से स्राव निकलता है, बाइबल इस स्राव के स्रोत के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग करेगी। वहां इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द बसार है और इसका अर्थ है मांस या शरीर, लेकिन यहां इसका उपयोग एक व्यंजना के रूप में किया गया है जो पुरुष अंग को संदर्भित करता है। और जैसा कि जब हमने तजारात का अध्ययन किया था और तजारात का गठन करने वाली और न करने वाली चीजों की एक विस्तृत सूची थी, तो अब हमें एक सूची मिलती है कि स्राव क्या होता है, जिसका अर्थ है असामान्य स्राव, और इसे इस रूप में कैसे पहचाना जाए। इसके दो मूल रूप हैं। पहला यह है कि स्राव एक प्रवाह है, एक तरल जो बहता है, और दूसरा एक बहुत गाढ़ा तरल पदार्थ है जो किसी छिद्र को अवरुद्ध या सील करने का काम करता है। इस स्थिति वाला पुरुष अशुद्ध होता है। आगे हम पाते हैं कि इस विशेष प्रकार की अशुद्धता निर्जीव वस्तुओं में भी फैल सकती है।
विशेष रूप से वह जो कुछ भी बिछाता है वह अशुद्ध हो जाता है, उसका बिस्तर, चटाई, तकिया, जो भी हो। इसके अलावा जो कोई भी संक्रमित व्यक्ति द्वारा अपनी अशुद्धता को इस वस्तु में संचारित करने के बाद इस वस्तु को छूता है वह भी अशुद्ध हो जाता है। तो यहां अशुद्धता एक व्यक्ति से एक वस्तु में जाती है और फिर उस वस्तु से दूसरे व्यक्ति में जाती है। दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को छूने से अशुद्ध हो गया है, अब वह खुद अशुद्धता का वाहक बन जाता है, एक वास्तविक डोमिनोज प्रभाव शुरू होता है। तो कुछ मायनों में स्राव से होने वाली यह अशुद्धता तजारात से भी अधिक संक्रामक है, क्योंकि तजारात से होने वाली अशुद्धता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है।
फिर भी जबकि स्राव से होने वाली अशुद्धता तजारात से ज्यादा संक्रामक है, यह तजारात जितना गंभीर मामला नहीं है। जो व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु को छूता है जिस पर स्राव वाले व्यक्ति ने रखा हो, उसे स्नान और प्रतीक्षा से शुद्ध किया जाता है, उसे पानी में डुबोया जाता है और फिर सूर्यास्त तक प्रतीक्षा की जाती है। कोई प्रायश्चित बलिदान आवश्यक नहीं है।
प्रभावित व्यक्ति की अशुद्धता का संचरण दूसरे इंसान को छूने से भी हो सकता है, और उस समय, और मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि क्या यह अभी भी है, एक बहुत ही घिनौना रिवाज था, अगर श्राव से पीड़ित व्यक्ति दूसरे पर थूकता था तो उसकी अशुद्धता उसके लक्ष्य तक पहुंच जाती थी।
पद 9 हमें बताता है कि न केवल वह जिस पर अशुद्ध व्यक्ति लेटता है बल्कि वह जिस पर सवारी करता है वह भी अशुद्ध हो जाता है। जो कोई भी उस वस्तु को छूता है जिस पर वह सवारी करता है, जैसे कि काठी सूर्यास्त तक अशुद्ध रहता है। पद 11 संकेत देता है कि यदि संक्रमित व्यक्ति अपने हाथ पानी से धोता है तो वह उन धुले हुए हाथों से किसी और चीज या किसी और को छू सकता है और उसके पास जो अशुद्धता है वह किसी और को नहीं जाएगी। अब यह एक दिलचस्प मोड़ नहीं है?
आइए यहां एक पल के लिए रुकें। मैं अधिक विस्तार में नहीं जा रहा हूं या स्राव वाले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अशुद्धता संचारित करने या न करने के इन सभी नियमों पर फिर से विचार नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान दें कि यह कितना जटिल है और अलग अलग परिणामों वाले कितने अलग अलग उदाहरणों को संबोधित किया गया है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई पाठों से पहले हमने चर्चा की थी कि कैसे हमें विश्वासियों के रूप में अशुद्ध चीजों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जरूरी नहीं कि अशुद्ध हो जाएं, लेकिन इसके विपरीत हमें यह भी निर्देश दिया गया है कि हम सिर्फ आपस में ही एकत्रित न हों, एक स्वच्छ और पवित्र लोगों की तरह, और इस तरह से अशुद्ध दुनिया में सुसमाचार ले जाने से बचें। दूसरे शब्दों में, हमें वास्तव में अशुद्ध लोगों को खोजने और उनसे प्रेम करने के लिए कहा गया है। हमें समलैंगिकों, वेश्याओं, कैद अपराधियों और हर तरह के अविश्वासियों को ढूंढना है, हर तरह के अशुद्ध लोगों को। हालांकि किसी तरह हम उनसे अशुद्धता का अनुबंध नहीं करते हैं, फिर भी संत पौलुस हमें सावधान करता है कि एक वेश्या को छूना, उसके कंधे पर दया का हाथ रखना और इन अशुद्ध लोगों को ईश्वरीय प्रेम और दया दिखाना एक बात है, और दूसरी बात, उदाहरण के लिए, एक वेश्या के साथ छुरना या मिलना, यानी उनके साथ यौन संबंध बनाना या उनमें से एक बनना। एक मामले में हम सभी तक सुसमाचार ले जाने के पवित्र आदेश का पालन कर रहे हैं, दूसरे में हम अशुद्ध चीजों से अलग रहने के पवित्र आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। दोनों में अशुद्धता के साथ संपर्क शामिल है, फिर भी यह अलग अलग डिग्री की अशुद्धता है जिसके अलग अलग परिणाम होते हैं। हमें इस प्रतीत होने वाले विरोधाभास से भ्रमित या हैरान नहीं होना चाहिए। लैव्य व्यवस्था दर्शाती है कि सभी अशुद्धताएं एक जैसी नहीं होती हैं और न ही विभिन्न प्रकार की अशुद्धता से शुद्धता का मार्ग एक जैसा होता है, सिवाय इसके कि इसमें हमेशा जीवित जल शामिल होता है, माइम वैयम। हमने लैव्य व्यवस्था में देखा कि एक संक्रमित व्यक्ति अपने आप को धोकर, दूसरे शब्दों में शुद्ध करके, अपने आप को शुद्ध कर सकता है। केवल उसके हाथ ही उसकी अशुद्धता को दूसरे तक पहुंचने से रोकते हैं। हमारे लिए भी ऐसा ही है। जीवित जल की वह सुरक्षात्मक और शुद्ध करने वाली बाधा जिसने उसकी अशुद्धता को दूसरे तक पहुंचने से रोका, वह यीशु है। हम न केवल उसके लहू में ढके हुए हैं बल्कि उसके जीवित जल से भी भरे हुए हैं, इसलिए हम अशुद्धता के संचरण से प्रतिरक्षित हैं जब तक हम उसके साथ एकता में रहते हैं।
फिर भी जैसा कि लैव्य व्यवस्था 15 में इस संक्रमित व्यक्ति के साथ हुआ, क्या इसका मतलब यह है कि चूंकि उसकी अशुद्धता को फैलने से रोकने का एक तरीका था इसलिए अशुद्धता अचानक खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। लोग मेरी बात सुने, अशुद्धता इस दुनिया में जिंदा है और अच्छी तरह से मौजूद है, भले ही आपको सभी अज्ञानी सिद्धांत सिखाए गए हों। यीशु ने अशुद्धता को खत्म नहीं किया, हालांकि अपनी वापसी के बाद किसी समय वह ऐसा करेंगे। पृथ्वी ग्रह पर अशुद्धता बहुत ज्यादा है और जहां संभव हो पवित्र लोगों के रूप में और जैसा कि हमें आदेश दिया गया है, हमें इसके संपर्क में आने से बचना है, निश्चित रूप से इसके साथ एकता में न आए और जानबूझकर इसके साथ कभी सहभागी न हो, सिवाय उन दुर्लभ मामलों के जहां हम मसीह के प्रेम और अनुग्रह का प्रदर्शन कर रहे हों।
दिलचस्प बात यह है कि अपनी अशुद्धता को इतनी आसानी से फैलाने के खतरे के बावजूद इस व्यक्ति को संगरोध में रहने या अपने घर या अपने परिवार को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पद 13 में हमें बताया गया है कि जब स्राव बंद हो जाता है तो यह उसकी बीमारी है और इसलिए अशुद्धता का कारण दूर हो जाता है। शुद्धता हासिल करने के लिए कदम बहुत हल्के हैं। उसे 7 दिन तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि उसे पता न चले कि लक्षण समाप्त हो गए हैं, और फिर वह नहाता है और अपने कपड़े धोता है। उसके बाद वह 2 पक्षियों को ले जाता है, सभी संभावित बलिदानों में सबसे कम खर्चीला और मूल्यवान तंबू में, जहां एक पुजारी अनुष्ठानिक बलि चढ़ाता है। मूल इब्रानी पाठ हमें बताता है कि एक पक्षी का उपयोग पहले हत्तात शुद्धिकरण बलिदान के लिए किया जाता है और फिर दूसरे पक्षी का उपयोग ओलाह होम बलि बलिदान के लिए किया जाता है। अब इसे देखें, पहला बलिदान हत्तात है जो शुद्ध होने के बाद व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करता है, यानी उसे पानी के माध्यम से अशुद्धता से वापस शुद्धता में लाया जाता है। हत्तात के बाद ही वह पूरी तरह से इसराइल का सदस्य बन जाता है, पवित्र और केवल इसराइल का पूर्ण सदस्य, परिभाषा के अनुसार जो पवित्र है ही धन्यवाद उपहार होम बलि ओलाह के साथ परमेश्वर के पास जा सकता है। इसलिए बलिदान के क्रम का भी हमारे लिए महत्वपूर्ण महत्व है।
पद 16 से 18 में मैं सामान्य पुरुष श्रावों के बारे में बात करूंगा जो स्वाभाविक रूप से होते हैं और जिनका बीमारी या शिथिलता से कोई लेना देना नहीं है। इसमें पति और पत्नी के शारीरिक रूप से एक साथ जुड़ने के सामान्य और ईश्वर निर्धारित कार्य के परिणाम भी शामिल है। फिर भी पति और उसकी पत्नी थोड़े समय के लिए अशुद्धता की सबसे कम संभव स्थिति में प्रवेश करते हैं। नहाना और इंतजार करना, नहाना और सूर्यास्त तक इंतजार करना पवित्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए एकमात्र आवश्यकता है।
इस सब के बारे में जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह है कि भले ही पति पत्नी थोड़े समय के लिए अनुष्ठानिक अशुद्धता की इस स्थिति में होते हैं, लेकिन यह सबसे कम गंभीर है, फिर भी यह अशुद्धता है। दोनों में से कोई भी तब तक धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकता जब तक कि वह फिर से शुद्ध न हो जाए। वास्तव में यदि पुरुष इजरायली सेना में योद्धा है तो उसे उस दिन युद्ध में लड़ने की अनुमति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इजरायली विदेशी सेनाओं के खिलाफ लड़े थे तो इसे पवित्र युद्ध माना जाता था। क्या आपको यह समझ में आया? कोई भी अशुद्ध व्यक्ति ईश्वर द्वारा संचालित पवित्र युद्ध में भाग नहीं ले सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक पवित्र प्रयास है और इसके अलावा पवित्र युद्ध के संबंध में प्रभु द्वारा सख्त नियम निर्धारित किए गए हैं। दूसरा और सबसे दिलचस्प एक प्रश्न से संबंधित है जो मुझसे कुछ समय पहले पूछा गया था। जब असामान्य स्राव वाला कोई पुरुष स्नान करता है तो इब्रानी शास्त्र कहता है कि विसर्जन पूरी तरह से जीवित जल नामक किसी चीज में होना चाहिए, मायमचयम। फिर भी अधिकांश प्रकार के अनुष्ठान विसर्जनों के तहत पानी में अधिकतर नियमित पानी और उसमें जीवित जल मिलाया जा सकता है। इब्रानी में इसे मिकवा मायम कहा जाता है। अधिकांश मिकवा पुराने समय के पत्थर के विसर्जन पूल आमतौर पर कुएं या झील के पानी से भरे होते थे और फिर उसमें कुछ मात्रा में सजीव जल मिला दिया जाता था। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता था। कुछ मिकवा जो झरनों और नदियों के पास थे और अधिक परिष्कृत शहरों जैसे यरूशलेम में स्थित थे, केवल जीवित जल का उपयोग करके पूरी तरह से भरे हुए थे। यह पुजारियों और आबादी के लिए अधिक उपलब्ध और सुविधाजनक पानी का उपयोग करने में सक्षम होने की तुलना में बहुत अधिक बोझ था। यदि डिस्चार्ज वाला कोई व्यक्ति किसी बाहरी गांव में रहता था, जो कि आदर्श था, तो उसे 100% मायम चयम से भरे मिकवा में स्नान करने के लिए कुछ दूरी तय करनी पड़ सकती थी। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्राव वाले व्यक्ति को फिर से शुद्ध होने के लिए 100% जीवित जल से स्नान करना आवश्यक था, जबकि सामान्य वैवाहिक परिस्थितियों में वह व्यक्ति और उसकी पत्नी अधिक सामान्य जल मिश्रण में स्नान कर सकते थे जिसमें केवल थोड़ा सा जीवित जल होता था। तो यहां अशुद्धता के विभिन्न स्तरों के लिए आवश्यक सफाई के विभिन्न स्तरों का एक और उदाहरण है।
तीसरा और अंत में यह ध्यान देने योग्य है कि परमेश्वर ने इब्रानियों के धर्म और अन्य सभी ज्ञात धर्मों के बीच एक सख्त और अभेद्य अवरोध रखा। दुनिया के अधिकांश धर्मों में यौन क्रिया धार्मिक अनुष्ठान का एक सामान्य और प्रथागत हिस्सा था, आमतौर पर, लेकिन हमेशा नहीं, प्रजनन अधिकारों से जुड़ा हुआ। यहोवा ने अपने पवित्र निवास स्थान से प्रजनन के साधनों और मानव कामुकता से संबंधित किसी भी चीज को प्रतिबंधित करने के लिए बहुत प्रयास किए। पद 19 से शुरू होकर बब स्त्री श्राव के बारे में चर्चा की गई है। पहली तरह का श्राव सामान्य होता है, महिला का मासिक चक्र, और वह शुरू होने के 7 दिन बाद तक अशुद्ध रहती है। इस स्थिति को इब्रानी में निदाह कहा जाता है, और जबकि यह अक्सर मासिक धर्म से जुड़ा होता है, इसे अक्सर बाइबल में एक महिला के अशुद्ध होने की स्थिति के लिए एक व्यापक शब्द के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो कोई भी इस अशुद्ध महिला को छूता है वह भी अशुद्ध हो जाता है, हालांकि यह अशुद्धता का एक हल्का स्तर है। अपने असामान्य श्राव वाले पुरुष की तरह यह महिला अपने सामान्य श्राव के साथ संक्रामक है, और वह अपनी अशुद्धता को किसी भी चीज में फैला सकती है जिस पर वह लेटती या बैठती है। शुद्धता के मार्ग में वही अनुष्ठान शामिल हैं, नहाना और सूर्यास्त तक इंतजार करना। हालांकि अनुष्ठानिक धुलाई में अपने कपड़े धोना भी शामिल है। अगर इस समय के दौरान पति और पत्नी यौन संबंध बनाते हैं तो उसकी अशुद्धता उसके पति को भी मिल जाती है, और वह भी उतने ही समय के लिए अशुद्ध रहेगा जितना कि वह 7 दिनों तक अशुद्ध रहेगी। अब जबकि बाइबल में अशुद्धता के कारण और आधुनिक विज्ञान के बीच बहुत अधिक समानताएं ढूंढना मुश्किल है, लेकिन एक महिला के मासिक धर्म और प्रजनन के नियमों के बीच एक समानता है। मुझे संदेह है कि इस कमरे में कई महिलाएं इस बात पर चिंतित होंगी कि इब्रानी महिला का जीवन कैसा रहा होगा जब उसे नियमित रूप से इन सभी अनुष्ठानों और इस तरह के कामों से गुजरना पड़ता था। वास्तव में यह उतना बुरा नहीं था जितना लगता है, और मैं कुछ रूढ़िवादी इब्रानी लोगों को जानता हूं जो इन अनुष्ठानों को संतोषजनक और सम्मानजनक के अलावा कुछ भी नहीं मानते हैं। ये एक चिकित्सा तथ्य है कि प्राचीन समय में आम इसराइली महिला को नियमित मासिक चक्र से नहीं जूझना पड़ता था। सबसे पहले आमतौर पर यौवन के तुरंत बाद उसकी शादी कर दी जाती थी, और लगभग तुरंत ही वह गर्भवती हो जाती थी और एक के बाद एक बच्चे को जन्म देना शुरू कर देती थी। दूसरा, एक महिला के लिए अपने बच्चे को तब तक स्तनपान कराना असामान्य नहीं था जब तक कि वह कम से कम 3 साल का ना हो जाए, और अक्सर 4 या 5 साल का भी हो जाए। एक स्तनपान कराने वाली माँ को आमतौर पर उस समय नियमित मासिक धर्म नहीं होता है, इसलिए वह अनुष्ठान अशुद्धता के उस कारण के अधीन नहीं है। इसलिए पश्चिमी महिलाओं का अनुभव बाइबल की महिलाओं के अनुभव से बिल्कुल अलग है। यह संभव है कि युवावस्था के तुरंत बाद छोटी लड़कियों को महीने दर महीने अशुद्धता के मुद्दों से जूझना पड़ता है, जबकि औसत विवाहित महिलाओं को ऐसा नहीं करना पड़ता।
पद 25 में हम सामान्य स्राव के विषय से हटकर महिलाओं में असामान्य स्राव की ओर बढ़ते हैं। आम तौर पर इस प्रकार के स्राव की परिभाषा यह है कि यह उसके चक्र के समय के बाहर होता है और यह जारी रहता है। इस स्वास्थ्य समस्या का सामना करने वाली महिला अशुद्ध है और जब तक वह इस स्थिति में रहती है तब तक वह अशुद्ध रहती है। अब यह स्थिति एक महिला के लिए भयानक रही होगी क्योंकि वह किसी अन्य व्यक्ति को न तो छू सकती है और न ही उसे छुआ जा सकता है। उसे अपने घर या शिविर के बाहर रहने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन उसे छूने से बचना चाहिए क्योंकि उसके संपर्क में आने से आप अशुद्ध हो जाते हैं। समझे, यह परंपरा नहीं है, यह सीधे बाइबल का नियम है जिसे सीधे शास्त्र से लिया गया है। इसलिए नए नियम में जब हम उस महिला की कहानी पढ़ते हैं जो 12 साल तक लगातार स्राव से पीड़ित होती रही, अच्छा रही, ये शारीरिक और भावनात्मक रूप से तबाह व्यक्ति था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत भी था।
आज हमने जो सीखा है उसके आधार पर आइए हम मरकुस 5 में दी गई कहानी को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें जिसमें स्राव से पीड़ित महिला की यह घटना घटी। यह अशुद्ध महिला जो 12 साल से इसी अशुद्ध अवस्था में है यीशुआ नामक एक यहूदी आस्था उपचारक के बारे में सुनती है और मदद के लिए उससे संपर्क करती है। पढ़िए मरकुस 5 का 22 से 34।
यह महिला जो अपने स्राव से अशुद्ध है और नकली चिकित्सकों को पैसे देने से गरीबी में है जिन्होंने उसकी मदद नहीं की, एक बहुत बड़ा जोखिम उठाती है। अगर उसने जानबूझकर किसी आदमी को छुआ होता, खास तौर पर यीशु जैसे रब्बी को, तो वह अपनी अशुद्धता उस तक पहुंचा देती। यीशु के दिनों में ऐसा करने की सजा यह थी कि उसे छावनी से बाहर निकाल दिया जाता, उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता था, हालांकि ऐसा बहुत कम होता था। वह यह जानती थी, यीशु यह जानते थे और भीड़ में मौजूद हर कोई यह जानता था, लेकिन वह इस बात पर इतना आश्वस्त थी कि यीशु वही है जो उसने कहा था कि वह अपनी अशुद्धता से ठीक होने की उम्मीद में उसके वस्त्र को छूने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया। सभी लेवी के नियमों के अनुसार यीशु को उसी क्षण अशुद्ध घोषित कर दिया जाना चाहिए था जब उसने उसके वस्त्र को छुआ था। इसके बजाय वह तुरंत ठीक हो गई थी और निश्चित रूप से चूंकि यीशु शुद्धिकरण का जीवित जल है इसलिए उसके अशुद्ध अवस्था में प्रवेश करने का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जैसे ही उस क्षेत्र में इस बारे में बात फैली कि क्या हुआ था, यह वही है जिसे अशुद्ध लोगों की श्रेणी में जोड़ा जाएगा जहां तक धार्मिक अधिकारियों का संबंध है। मसीह प्रदर्शित करता है कि यह कैसे संभव है कि एक विश्वासी को अशुद्धता द्वारा छुआ जा सकता है और फिर भी वह अशुद्ध नहीं होता। यह कहानी आगे दर्शाती है कि उसने इस अशुद्ध व्यक्ति अपनी किसी गलती के बिना अशुद्ध को फटकार नहीं लगाई जो अपनी अशुद्धता से ठीक होने का रास्ता खोज रही थी, बल्कि उसने अपना प्यार और दवा दिखाई जब वह विश्वास के एक सरल लेकिन जोखिम भरे कार्य में आगे बढ़ी।
अब लेव्य व्यवस्था 15 की अंतिम कुछ आयतों को पढ़कर हम जानते हैं कि मरकुस 5 की कहानी में महिला के साथ निम्नलिखित हुआ होगा। उस सबसे पहले जब उसका स्राव समाप्त हो जाता था तो उसे 7 दिनों की अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, उसके बाद वह शुद्ध हो जाती थी और मंदिर में जाकर पक्षी की बलि बढ़ा सकती थी। यह हत्तात बलिदान शुद्धिकरण बलिदान था। फिर उसने होम बलि औलाह बनाने के लिए एक दूसरे पक्षी, एक बहुत ही सस्ता बलि पशु का उपयोग किया होगा। अब मैं यह देखे बिना नहीं रह सकता कि अनुष्ठानिक स्नान का कोई उल्लेख नहीं है। यह उलझन भरा है और मेरे पास वास्तव में इसका कोई समाधान नहीं है। एक संभावना यह है कि यह इतनी अच्छी तरह से समझा गया था कि ऐसे मामलों के लिए अनुष्ठान स्नान की आवश्यकता होती है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। हम कई बाइबल के अंशों में पाते हैं जब यह बलिदानों की बात करता है कि इसका वर्णन करने के लिए एक तरह का संक्षिप्त सूत्र इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए एक अंश मिंचाह की आवश्यकता के बारे में बात करेगा लेकिन ओलाह का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया है। फिर भी हम जानते हैं कि जब भी मिन्या किया जाता था तो ओलाह की आवश्यकता होती थी क्योंकि ये दोनों बलिदान एक साथ किए जाते थे। आप ओलाह की बिना मिंचाह नहीं कर सकते,
लेकिन जहां तक अनुष्ठान विसर्जन का कोई उल्लेख नहीं है, एक महिला अपने दीर्घकालिक असामान्य स्राव से ठीक हो रही है, लेकिन हम यह निश्चित रूप से नहीं जान पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है।
लैव्य व्यवस्था 15 की अंतिम आयत, वास्तव में अध्याय 11, 12, 13, 14 और 15 का सारांश है, जो अनुष्ठान अशुद्धता से संबंधित अध्याय हैं, और यह हमें संक्षेप में व्यावहारिक कारण बताता है कि क्यों इसराइलियों को इन शुद्धता नियमों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे यहोवा के पवित्र स्थान को अपवित्र कर सकते हैं और इसके लिए दंड मृत्यु हो सकती है।
मूल इब्रानी में पद 31 का शब्दांकन दिलचस्प है। इब्रानी में वे हिज्जारतिम शुरू होता है और यह वाक्यांश यहां और बाइबल में कहीं और इस्तेमाल नहीं किया गया है, और इसके सबसे शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ है तुम इसराइलियों को दूर रखोगे या तुम इसराइलियों को सभी अशुद्धता से अलग रखोगे। और जाहिर है आगे यह भी कहा गया है कि उनकी अशुद्धता परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र कर सकती है और दंड उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मुद्दा यह है कि यहोवा कह रहा है कि पहले स्थान पर अशुद्ध मत बनो, और यदि तुम ऐसा करते हो तो इसे मेरे पवित्र तंबू के पास पार्क करने के बारे में भी मत सोचो।
अब जबकि यह अध्याय 15 समाप्त होता है, मैं यह बताने से खुद को नहीं रोक सकता कि अध्याय 16 के पहले शब्द हैं हारून के दो बेटों की मृत्यु के बाद प्रभु ने मूसा से बात की, जो तब मर गए जब वे प्रभु की उपस्थिति के बहुत करीब आ गए थे। इसीलिए ये सभी नए नियम लोगों के दिमाग में बिल्कुल नए थे, और वे जानते थे कि जब परमेश्वर ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वे उनके पवित्र निवास स्थान को अपवित्र करेंगे तो वे उन्हें मार देंगे, जो कि निश्चित रूप से आज पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आवश्यकता एक सरल है, स्वच्छ और पवित्र बने और उसी तरह बने रहें या मर जाएं हमेशा के लिए परमेश्वर के हाथों।
अगले सप्ताह हम लैव्य व्यवस्था अध्याय 16 पर चर्चा करेंगे।